5.1.2 परिभाषाएं डेफिनेशंस। आइए हम एक ऐसी परिभाषा से प्रारंभ करें जो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विज्ञानों दोनों में विकास के सामान्य गुणों को बताने का प्रयास करती है। मार्शल साहलिंस एवोल्यूशन एंड कल्चर में विकास की अवधारणा को चित्रित करता है। साहलिंस विकास को दो पहलुओं, विशेष विकास एवं सामान्य विकास की एक प्रक्रिया मानता है। साहलिंस इन दो स्पष्ट स्थितियों को विकासात्मक प्रक्रिया के पहलू मानता है। विकास साथ साथ दो दिशाओं की ओर बढ़ता है। नंबर एक, यह स्वरूपों को परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर परिवर्तन करता है। नए स्वरूप बनते हैं तथा पुराने स्वरूप से भिन्न होते हैं। नंबर दो, विकासात्मक प्रक्रिया की सामान्य प्रवृत्ति छोटे स्वरूपों की जगह बड़े स्वरूप लेने की है। नंबर तीन, परिवर्तन व भिन्नता की प्रक्रिया विशेष विकास कहलाती है। यह अनुकूलन की ओर ले जाती है। समूचे रूप में विकास की प्रक्रिया छोटे से बड़े विकास की ओर जाने की प्रवृत्ति सामान्य विकास कही जाती है। चार्ल्स डार्विन ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में विकास की अवधारणा का उपयोग द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज में किया है। विकास का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि जनसंख्या के अनुवांशिक गुणों में कुल परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि बढ़ रही जनसंख्या के सदस्य सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना करते हैं। शेर घोड़ों को चुनौती देते हैं। सामाजिक संबंध तथा आदर्श मानव को चुनौती देते हैं। जब मानव जाति किसी ऐसे हल पर पहुंचती है जो उनके समूह में उनकी अनुकूलन क्षमता को बढ़ाती है, तो यह हल सांस्कृतिक विरासत के नए तथा मूल्यवान तत्व के रूप में स्वीकार व संरक्षित किया जाता है। चुनौती के कारण अधिक अनुकूल होने वाली संस्कृतियों का इकट्ठा विकास होता है। पेज नंबर 91। अगस्टे कामटे ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में कई योगदान दिए हैं। उसके लिए परिवर्तन एक सामान्य बात है तथा सभी समाजों को तीन चरणों में से गुजरना पड़ता है। नंबर एक, विजय का चरण, स्टेज ऑफ कॉन्क्वेस्ट। नंबर दो, रक्षा का चरण, स्टेज ऑफ डिफेंस। नंबर तीन, उद्योग का चरण, स्टेज ऑफ इंडस्ट्री। सभी समाजों को इन तीनों चरणों से मानव के किसी प्रयास से नहीं बल्कि अलौकिक इच्छा के परिणाम स्वरूप गुजरना पड़ता है जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। कामटे मानता था कि मानव बुद्धि परिमार्जन के तीन ऐतिहासिक चरणों से गुजरी थी। पहले या अलौकिक चरण में मानव निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेता है। प्राकृतिक घटनाएं आत्माओं या देवताओं द्वारा घटित मानी जाती हैं जो मानव की भावनाओं द्वारा प्रेरित हैं। दूसरा या अभौतिक चरण वह काल है जिसमें मृत्यु को अमूर्त शक्तियों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। तीसरा या सकारात्मक चरण वैज्ञानिक काल है जिसमें लोग प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में तथा सुनिश्चितता की खोज नहीं करते। ना केवल प्रत्येक समाज बल्कि प्रत्येक व्यक्ति तथा विज्ञान की प्रत्येक शाखा को विकास के क्रम के मध्य इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ता है, भले ही इसे विभिन्न दरों से गुजरना पड़े। इसी भावना से कामटे का जगत एक रेखीय विकासवाद था। हर्बर्ट स्पेंसर ने विकास को जैव संरचना के विकास के संदर्भ में स्पष्ट किया है। उसके अनुसार समूची प्रकृति में सामान्य विकासात्मक कानून चलता है तथा ब्रह्मांड में सामान्य प्रकृति प्रगति की ओर होती है। हर प्रकार की प्रगति का सामान्य कानून एक रूपता से अनेक रूपता में परिवर्तन है। संरचना तथा पदार्थ का अंतर है। परिवर्तन के सभी रूप साधारण से जटिल हो जाते हैं। उसने दलील दी है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैव संरचना साधारण से जटिल हो जाती है, इसी प्रकार मानव समाज भी साधारण से जटिल स्वरूप धारण कर लेता है। स्पेंसर की सामाजिक विकास प्रणाली के चार तत्व हैं। नंबर एक, सभ्यता की ओर प्रगति का लक्ष्य। नंबर दो, प्रक्रिया के उद्गम की परिस्थितियां अज्ञानता तथा पशुता। नंबर तीन, प्रगति की ओर परिवर्तन का स्रोत जनसंख्या के दबाव की मजबूरी। नंबर चार, वह गतिशीलता जिसके द्वारा सामाजिक विकास एक चरण से दूसरे चरण में होता है। लेविस हेनरी मार्गन का विकास का सिद्धांत ऐतिहासिक सामान्यीकरण पर आधारित है। उसकी पुस्तक एंशियंट सोसाइटी के अनुसार मानव समाज का 3 सुनिश्चित क्रमिक कालों में विभाजन हुआ है। नंबर 1 पशुता, नंबर 2 बर्बरता, नंबर 3 सभ्यता। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, जंगलीपन, फिर बर्बरता, उसके बाद सभ्यता का क्रम। पेज नंबर 92। यह केवल संयोग या आकस्मिक नहीं है, इतिहास ऐसे ही बना है तथा वह अन्य किसी प्रकार बन ही नहीं सकता था। जंगलीपन के प्रथम काल में मनुष्य की मानसिक स्थिति तथा उसने जिन परिस्थितियों का सामना किया वे सभी नस्लों तथा संस्कृतियों के लिए समान थीं, यहाँ तक कि चिंतन भी समान था। मानव का मस्तिष्क सामाजिक विकास के साथ विकसित होता गया, आविष्कारों व संस्थाओं के साथ दिमाग बढ़ता गया। प्राचीन समाज में क्रमिक कालों का अंतिम चरण सभ्यता अंतिम नहीं है, यहीं पर अंत नहीं हो जाता। सभ्यता उन सभी संस्कृतियों के संदर्भ में है जिनमें लेखन तथा अन्य सहगामी कौशल प्राप्त हुए हैं। अतः मार्गन के लिए इतिहास आविष्कार व खोज का इतिहास है, संस्थागत स्वरूप के विचारों के विकास का इतिहास है। मानव मस्तिष्क में कई विचार बने और विकसित हुए हैं, सरकार, परिवार तथा संपत्ति के विचार। ये विचार क्रमिक रूपों में विकसित होते हैं।